मनुष्याणां सहस्त्रेषु तदत् प्रति जलति
सिद्धये
सिद्धानाम् अपि मुक्तानां कश्चिन्मान् वेदतत्त्वतः। साधारण मनुष्य में कोटि कोटि लोगों में से कोई एक आदमी सिद्ध होता है और ऐसे कोटि कोटि सिद्धों में से कोई एक आदमी तत्व से मुझे जानता है। और भी भागवत या गीता में भी ऐसा कहा गया नारायण पारायण कोटिस्वती महामुनि श्लोकपति ये सब आप लोगों को इस श्लोकों को याद करना चाहिए। कोटि कोटि लोगों में से कोई एक नारायण का उन्मुख व्यक्ति होता है सेवक और कोटि कोटि नारायण भक्तों में से कोई बिरले ही कृष्ण का भक्ति पाता है और कृष्ण के कोटि कोटि भक्तों में से कोई बिरले ही ये सब विचारों को समझ सकता है। राधा पद दास्य की लालसा कोटि कोटि कृष्ण भक्तों में बिरले मिलेगी। तो यह इसी चीज का ये कुछ आभास दे रहे कृष्ण। राधा पद दास्य का तो नहीं, अभी वहां से बहुत दूर है, अभी केवल सखर स्काय या ब्रज भाव का थोड़ा सा ये कुछ उसकी रूपरेखा कुछ ये वर्णन कर रहे हैं जिसमें बतलाया कि शास्त्रों में प्रेमा भक्ति का कुछ तटस्थ लक्षण दिया गया है, स्वरूप लक्षण का वर्णन नहीं किया गया। और तटस्थ लक्षण का जो वर्णन किया गया इसलिए जो कहा कि एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो विकचित्त उच्च हसतत्थो रोदति रौति गायत नित्यति लोकपाय। सनातन गोस्वामी में टीका में कहते हैं कि कहीं पर आग लगी हो और जैसे कि इराक इत्यादि में बमबारी से आग लग रही है और उस आग में मीलों तक का सभी कुछ भस्मीभूत हो रहा है, बड़ी बड़ी लपटें उठ रहा और 20-25 मील दूर से वो सब लपटें दिखाई पड़ रही हैं। भयंकर है ना, कितने पशु कितने आदमी उसमें जल करके खत्म हो जाएंगे। तो इतना वर्णन नहीं किया, कहा कि गांव में आग लगी थी और कुछ दमकलों ने आकर के उसे दिखा, बस इतना ही कहा। तो शास्त्रों में यहां पर जो कहते हैं रोदती रौती गायती उन्मादर यहाँ पर उनके हृदय में कैसी भीषण आग लग रही है। इस श्लोक में वो वर्णन डर के मारे नहीं किया, आग की भयानक जो भयानकता थी उसको इसमें व्यास जी ने अथवा सुखदेव गोस्वामी ने जान बुझ करके छिपा दिया और कम वर्णन किया। और ये क्यों जो कल बतलाया था लोगों को, अरे कृष्ण के भक्ति में जो आनंद में कही जाती है इतनी भीषण दवाग्नि होती है तो वो अच्छा है जिसमें अत्यंत दुख निवृत्ति है वो चीज अच्छी, जिसमें आनंदम एम ब्रह्म मैं ही वो ब्रह्म हूं और आनंद स्वरूप हूं और मुक्ति में आनंद मिलता है यही चीज ठीक है। उस दावालन में जलने की कोई जरूरत नहीं है। साधन समय भी रो और सिद्धावस्था में और अधिक करो और हृदय में इतना कोटि कोटि दावालन के आग की ज्वाला से भी अधिक इसमें ज्वाला होती है। यदि ये कोई जान ले तो कोई धर्म में कोई आएगा ही नहीं। इस ढंग से केवल कह दिया रोदति और यदि राधिका की चंद्रावली की पद्मा की ललिता विशाखा की कृष्ण के विरह की बात यदि यहां पर लिखते और भागवत में वर्णन किया जाता पागलनी का तो उदाहरण दिया ये पागल हो गए और पागल जैसा प्रलाप कर रही है यहां तक तो कहा किंतु कैसे पागल कैसे हो गई इस चीज का वर्णन नहीं किया। इसलिए कहते हैं ये भाई हमारे बड़े बड़े टीकाकार ने भी और भागवतकार ने भी इसको छिपा करके रखा लोगों से, क्यों साधारण लोगों को विपरीत बुद्धि हो जाती, जैसे गीता में कहा न कर्म बुद्धि
न भेद जन
भेद बुद्धि जनयेत कर्म संगीना, जो कर्मी हैं उनको यह मत कहा जो कर्म छोड़ दो, विवाह मत करो, माता पिता का माता पिता कौन भाई कौन ये मत कहो, कहो माता पिता कामादत्त, बड़ा भाई भी पिता के समान है, स्त्री जिसका हाथ पकड़ा है जीवन तक निर्वाह करो, पति ही परमेश्वर है, जननी जन भूमिश्च स्वर्गादत्त गरीयसी, ये सब चीजों को बताया उनको, ये मत कहो कुछ देखो ये सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करो तो वो क्या करेंगे, माता पिता को छोड़ देंगे और भाई बंधु को छोड़ करके व्यभिचार में रत हो जाएंगे, बड़े निशक्त हो जाएंगे और सब धर्म कर्म सब छोड़ देंगे और भक्ति तो करेंगे नहीं, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसलिए जो साधक हैं जो भजन कर रहे हैं भक्ति उनको भी विरह की ये बातें जो प्रेम में होती है ये बतला क्यों वो छोड़ देंगे, इसलिए यही कहो जय आत्मा, इसलिए उन्होंने भागवत ने कह दिया जय आत्मा, किंतु बात कुछ और ही है, इसलिए नारद जी इनको नहीं बतलाना चाहते और ये सुनना चाहते हैं और थोड़ा सा जब भी बतलाया तो कल उदाहरण मैंने दिया रत्नों की पेटिका में यह महा दुर्लभ चिंतामणि के रूप में ये उपदेश दिए गए, कुछ किताब तो हो गए कौन क्यों अब इसके लिए योग्य होकर के अब वहां तक पहुंचे हैं बैकुंठ में, किंतु मन नहीं लग रहा था और समझ नहीं रहे क्यों मन नहीं लग रहा, अब उनका वहां तक बैकुंठ तक अधिकार हो गया है और उससे ऊपर जाने का अधिकार हो रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी उसकी सुगंध छोड़ रहे हैं, जैसे सुगंध से उस वस्तु को जो कहां से सुगंध आ रही है वो उनको पता लग जाए, उसके लिए थोड़ी थोड़ी सुगंध केवल छोड़ रहे हैं। इसलिए कल बतलाया था कि प्रेम भक्ति का जो परिपाक अवस्था है वो उसका निरूपण करने में मैं भी समर्थ नहीं और किसी का भी नहीं कोई भी समर्थ नहीं, और तत्व संरक्षण के द्वारा जो बतलाया गया है वो भक्ति तत्व भक्ति शास्त्र का विरोधी हो जाता है, तो कल विरोध के संबंध में बतलाया था साधारण शास्त्रों में जो लिखा है ठीक भक्ति का परिपाक जो प्रेम है वो एकदम विपरीत हो जाए, कैसे शास्त्र में कहा जी भक्ति कैसी है भक्ति रे मनंगति भक्ति वसो पुरुष भक्ति रे वो पूजसी इत्यादि बताया, भक्ति आनंदमय है और ये भक्ति भगवान के पास में आनंदमय पास में ले जाती है और लेकर के भगवान के चरणों के साथ उसका मिलन करा करके उसके जीवन को आनंदमय बना देती है, जहां भी है ऐसा सब वर्णन किया बड़ी आनंदमय है बड़ी आनंदमय है, और जब श्रीमद्भागवत का दशम स्कंद का भ्रमर गीत इत्यादि करते हैं और विशेष करके गोस्वामियों के चरित्र जबकि पंथों को करते हैं तो बात कुछ उल्टी थी। कृष्ण जब से गए श्याम
वन शाम गए हो ब्रज से,
जब से गए हैं ना तब से राधा जी की और गोपियों की क्या दशा, कैसी दशा है इसका वर्णन करना पड़ता है, वर्णन भी किया जाए उनकी क्या दशा। किंतु उसमें कल बतलाया ना ये उसमें कुछ कुछ आनंद है, कुछ कुछ क्या वो आनंद ही है और आनंद का ही आनंद की ही एक लहर है ना? उसके आनंद की एक लहर है जो ऐसे देखती है ना? पानी एकदम सीधा साधा है और उसमें लहर कैसे होती है, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची और आदमियों को बहा ले जाएगी, ऐसे ये प्रबंध के ये सब भाव है प्रेम की तरंगे, ये सब है। जिस समुद्र में प्रेम कोई तरंग नहीं वो समुद्र कैसा, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भक्ति के विषय में शास्त्रों के वचनों में और उनके उदाहरणों में कुछ विपरीत भाव हो जाता है, ये सब मैंने बताया था। तब भाव उत्कर्ष माधुर्य विदुष तद रसेन सेवित सेविन तत्त्य त्वमपि ज्ञास्यसि अचिरात् प्रसादतः। मैं क्या बतलाऊं, जैसे ही तत्रायण जी ने कहा गिरा और नयन पानी में नैन में और नैन में पानी में है तो दोनों नहीं वर्णन, आंखें न वर्णन कर सकती हैं और न जीवा देख सकती है तो ये ठीक ऐसा ही करते वो कह रहे हैं ये जो भाव है प्रेम का परिपाक, प्रेम का परिपाक दो प्रकार से, एक संभोग और एक प्रणाम, दोनों ही उसके परिपाक। विशेष करके गुड़ से जब की बनाते हैं ना चीनी बनाते हैं तो क्या करना होता है, पकाने के लिए क्या करते हैं नीचे चूल्हे के नीचे आग लगा देते हैं लकड़ी और बड़ी जोर से वो जलती है और रस को उस पर रख देते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं एक लकड़ी का बना करके रखते हैं चलाने के लिए, फेन होता जाएगा और फेन को मैंने मैल को हटाते जाएंगे और उबलते उबलता रहेगा, ऐसे नहीं होगा बिना जलाए हुए तपाए हुए परिपाक वो होगा ही नहीं, पाक होने के लिए जितना ही पाक होगा चीनी भी परिपक्व होने के बाद उसको फिर से गलाना पड़ेगा तब वो शीतोत्पल होगा, ऐसे नहीं बन जाएगा वो सब, वैसे ही प्रेम कब निखरेगा विप्रलंब से, विप्रलंब की आग से वो निखरेगा। राधा और कृष्ण दो हैं, विरह की आग पर दोनों को चढ़ा दिया गया नहीं? दोनों द्रवित हो गए, अब द्रवित हो उसके दोनों मिल गए और मिलने के बाद में जब दोनों मिल गए ना फिर उसमें प्रेम का रंग उसमें डाल दिया, अब तब उमिल करके क्या हो गया उसी तरह स्वराज महाभाव कर ये सर्वोत्तम भाव बिना ताप के नहीं हो। हम लोगों में भी खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं फिर रहे हैं बड़े आनंद से, कहां भक्ति है, यदि थोड़ा सा ताप होता राधा कृष्ण के लिए दर्शन की ऐसी लालसा होती हृदय में अनुताप होता और वाणी भी वहां पर स्तब्ध हो जाती, अभी बतलाए हैं आंसू आएगा कब, जहां पर वाणी भी
रुद्ध हो
जाएगी और प्रेम की बाढ़ से हृदय के उस बांध को भी जब तोड़ देगी तब आएगा वो पानी। जब तक कि पानी नीचे स्तर पर है तब तक तो वो बढ़ेगा नहीं, या तो बांध को तोड़ना पड़ेगा नहीं तो उच्छ्वासित होकर के पानी ऊपर से आएगा नहीं। ऐसे ही हृदय की बांध माने धैर्य जो है वो बाणी टाणी सब रुद्ध हो जाएगी, स्तब्ध हो जाएगा और तब उसमें से ये जल के रूप में द्रवित होकर के रूप आएंगे। हम लोगों का अभी कभी कृष्ण के लिए कहां होता है, कभी भाव उच्छ्वास के लिए भावाभास के रूप में कभी कभी कुछ आ जाता है, वो भी जागतिक दृश्य कुछ मिलने से, नहीं तो कहां भी प्रेम कहां भाव। अभी परिपाक के अभी कभी गुड़ का रस भी नहीं निकला, एक तेरी मिल गई कोल्हू में, वो कैसे बनता है भाई, गन्ना का रस कैसे बनता है, आराम से बन जाता है ना, अपने आप निकल आता है रस तो न, कैसे आता है कोल्हू लोहे की और उसमें उसको दे दो और वो चिपट करके पीस देता है। अभी पिसाई हुई, अभी थोड़ा सा भी धन छोड़ने में, कुछ संसारिक भोगों को छोड़ने में तो ये दशा, और प्रतिष्ठा छोड़ने में कैसी दशा। और जिस समय भगवान उस कोल्हू में फेरेंगे, अभी तो हम लोगों को भी इस योग्य देखा कि अभी ईख में अभी अंकुर हो रहा है, लगाते हैं ना काट करके, गंडे को काट करके लगा देते हैं उसमें अंकुर हो रहा है, अभी पत्ता भी नहीं निकला है, अभी तैरने लायक हम लोग हुए ही नहीं, तो अभी हम लोगों पर अभी कहां ये सब चीजें हैं। तैरने लायक होगा जब उसमें रस हो जाएगा तब तो तैरेगा, अब तक फिर रस निकलेगा तब फिर आग पर चढ़ेगा होगा। अभी बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर है, इसलिए अभी प्रेम हम लोगों से बहुत दूर है, इतना ही छोड़ते नहीं है, स्वार्थ के मारे लड़ाई झगड़ा निंदा बंधन, अभी तो अनर्थ ही नहीं जा रहा, अभी तो अंकुर भी प्रेम नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं नारद जी देखो उत्कर्ष और माधुरी है, इस भाव का जो उत्कर्ष है और माधुर्य है केवल रस के ही जानते हैं जो इस रस को अनुभव किया है, और जो अनुभव करने वाला है वो बोल भी नहीं पाता, वाणी स्तब्ध है और रुद्ध हो जाती है, बस उसको कैसे जाना जाता है आंसुओं से, उसके नेत्र से जो आंसू गिरते हैं बस उसी को कोई पढ़ ले। राधा जी पत्र लिख रही हैं कृष्ण समझ गया, श्रीमती राज का इज राइटिंग ए लेटर टू कृष्ण, एक लेटर लिख रही है। शाम को बैठी है? केले के पत्ते ले लिए या कोई कोमल पत्ता, और लाल फूलों का वो जो कलियां होती है ना अनार की, लाल लाल होती है, लेकर के मसल करके थोड़ा सा रस निकाल दिया और मोर पंख से उसको लिखना आरंभ किया। क्या लिखेंगी, प्रेम पाती लिख रही हैं कृष्ण के लिए, और कृष्ण लिखेंगे पहले संबोधन तो करेंगे ये कृष्ण, तो वो क की बिंदी यहां पर अभी दिया है, और जब ही उनका स्मरण करने लगी तो ये चित्त द्रवित हो गया आंसुओं के बूंदों से, वो भर गया, क नहीं लिख सकता। और अंत में राधा प्यारी जी कृष्ण की चिंता करते तन्मय होते 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 भावावेश में कृष्ण बन करके, अब कृष्ण जो लिख रही थी अब वो कृष्ण बन करके सोच रही मैं अब कृष्ण हूं, सोच नहीं कृष्ण ही तन्मयता में बन गई और रो लिखने लगी और रखते उनके विरह में तड़पते तड़पते आंसुओं के बूंदे कुछ आई और खुद की एक बिंद दिया और सवेरा हो गया, कुछ नहीं लिख सकते। सवेरा हुआ, ललिता जी ने उसी को बंद कर दिया और किसी धागा जैसा निकाल करके लाल पीले और निकाल करके और उसी से बांध करके कृष्ण के पास में पहुंचा दिया। और होता तो शायद नहीं पढ़ पाता इस पत्र को, तो कृष्ण जी ने पढ़ लिया कि नहीं। कृष्ण पढ़ करके और उनके भी आंसू उन आंसुओं पर मिल गए, दोनों के आंसू एक हो गए। कृष्ण भी विलाप करने लगे उस पत्र को पढ़ने, क्योंकि हमारे प्रति ऐसा प्रेम अद्भुत। तो वही कह रहे हैं यहां, रस सेवी जो रसिक जन है वही रसिकों की बातों को समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। यदि टिकाएं नहीं होती तो भ्रमर गीत का भी अर्थ, यहां पर कि गोपियों ने कृष्ण को बड़ा भला बुरा कहा है, नहीं समझ सकते थे। चोर क्या क्या नहीं, ठग धूर्त, मैंने कोई भाषा नहीं रखी रख छोड़ कृष्ण के लिए। और वो कहते हैं कि यही सर्वोत्तम भागवत में, ये सर्वोत्तम सबसे अच्छी बात है। तो ये किसने कहा, ये कहा हमारे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो रस के मर्मज्ञ हैं, या अवसर ने कहा, या इसके बाद में हमारे जी गोस्वामी सनातन गोस्वामी और जितने भागवत के बड़े बड़े आज तक वक्ता हो गए हैं, सब लोगों ने चीज सुनी है। और एक बड़ी विचित्र बात है, अभी तो तुम बड़े भोले भाले लगते हो, तुम भी उसी जगह कर आने वाले हो, बाई चांस वहां से कुछ फिसल करके इधर आ गए, किंतु हो तुम घरी के तत्रत्य तमसी, तत्रत्य तुम भी वहीं के हो ना? ग्यास अचिरा, तुम जानते भी हो किंतु तुमको भी अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं अनुभूति, किसी कारण से फिसल गए थे, अब तुम वहीं पर जाना वाले हो और कुछ दिन में हमारे बतलाने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। इन सब चीजों को हमसे भी अच्छी तरह से तुम वहां पर जाकर के समझोगे। तब प्रसाद उन्हीं की कृपा से, किनकी कृपा से, कृष्ण की कृपा से तुम इन सब विषयों को अच्छी तरह से समझोगे। गोप कुमार उपासक गोप कुमार जी कहने लगे, एवं निजष्ट देव गोपाल चरणाब्जयो नितरं दर्शन उत्कंठा तद वाच्या में प्रवर्धता। गोप कुमार जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं याद है, उनको कह रहे हैं गोवर्धन वासी मित्र से कह रहे हैं, अपने एक तरह से शिष्य से कह रहे हैं। बोले जिस समय नारद जी की बातों को सुन करके अपने इष्ट गोपाल, अपने जो इष्ट देव जी गोपाल थे, हृदय में बड़ी भारी उत्कंठा हुई थी। कब देखी, कब देखी, बड़ी भारी उत्कंठा की, उनके उत्कंठा जगाने के लिए ही कहा था। तत्सक्षण और ततक्षणार्थ, मैंने उसी समय में मुझे वो जो भाव विशेष माने प्रेम की परिपाक अवस्था जो है, उस भाव को पाने की तीव्र लालसा हुई, वैसा भाव मुझे कब आए, और अपने इष्ट देव को दर्शन की लालसा, क्यों दो लालसा, एक क्या
भाव,
उस भाव को, और एक प्रभु के दर्शन की लालसा, दोनों साधक में दोनों चीजों को होना जरूरी है। पहले होगा तब साधन में, साधन में पहले जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिखाया
भजन विषय भजनीय
भजन विषय में और भजनीय विषय में। अब ये जो भाव बतलाया ना वो तादृश भाव प्रेम का परिपाक वो साधन विषय है ना साध्य विषय है क्या है भजन साध्य है भजनीय है भजन नहीं है। भजन तो इस जगत में ही होगा उस जगत में भजन नहीं है इसलिए ये दोनों भजनीय हैं। भजनीय में दो विभाग यहां पर बताया गया प्रेम जितना उच्च कोटि का होगा अपने इष्ट देव के दर्शन की उतने ही तीव्र लालसा होगी और भाव है ही नहीं है तो दर्शन की लालसा होगी कहां से। इसलिए ये दोनों भाव बड़ी तीव्र उत्कंठा इनकी हुई और उभये के लालसा से महाशोक में शोक रूपी समुद्र में मानो डूबने लगे। क्यों शोक शायद अब ऐसा हमको प्रेम का परिपाक भी नहीं मिलेगा जैसे कि मैं अपने बाल गोपाल का दर्शन कर सकूंगा और इतना जिस जो नारद जी के लिए संभव नहीं है जबकि नारद जी ने कहा दैन्य के लिए अपनी दीनता दिखलाने के लिए नारद जी में ये चीजें हैं किंतु नारद जी ने दीनता बस कहा कि हमारे अंदर में वैसा प्रेम नहीं है मैं ऐसा बतलाने के योग्य भी नहीं हूं। गुरु भी ऐसे कह सकते हैं कि हमारे में राधा प्रेम कृष्ण प्रेम कहां कह सकते हैं ऐसे गुरु गति हूं सचमुच में ऐसा प्रेम होना बड़ा कठिन है। करोड़ों लोगों कृष्ण भक्तों में भी कोई एक का ये कभी यदि संभव हो गया तो कभी हो गया जगत में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। प्राभार्य महाप्रभु का कहते हैं न प्रेम गंगोस्तु दरापि में हरऊ
कृंदामि
सौभाग्य धर्म प्रदाश। इसलिए बड़ा कठिन किंतु हम लोगों का उद्देश्य वही होना चाहिए उससे कम में हम नहीं कुछ लेंगे चाहे भूख पर रह जाएंगे मर जाएंगे यही भाव रहेगा भले ही हो किंतु रह जाएंगे भूखे किंतु इससे कम नहीं लेंगे किंतु हमारे कहने से ही हो जाएगा एक पैसा का मुंह जो नहीं छोड़ सकता पैसा गिरा हुआ है पांच पैसा नीचे से उठा करके ले लेंगे कोई चीज कहीं गंदी चीज नहीं पड़ी तो उसे उठा लेंगे। प्रतिष्ठा रूपी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लालसा और ऐसी गंदी चीज और कोई नहीं जानते हुए भी हम नहीं छोड़ पाते हैं जानते हैं कि सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए होता है यही चीजें नहीं छूट पाती हैं। यहां पर अगस्त ऋषि थे वहां पर सांप नेवला बकरी बाघ सब एक साथ में बिल्ली और चूहा सब एक साथ में मिल जुल कर गए अगस्त ऋषि के आए और हम लोग कहां बनती ही नहीं है किसी को
ज्यादा
ना ठीक है तो वहां पर कीर्तन करा दें बांके का कीर्तन और वही सब का दिल्ली में तैयार होकर के आए हैं वो उदम उतर ही आ गया अच्छा वहां से गाड़ी उड़ी आई है अब यही प्रश्न समाप्त करेंगे। अब दोनों की लालसा दो लालसा हुई एक क्या ऐसे परिपाक युक्त प्रेम पाने की लालसा और अपने प्रभु को देखने की उत्कट अभिलाषा लालसा ये दोनों लालसा मिलकर के वीर समुद्र में उनको डुबाने लगा। क्यों सो न तो मुझे ऐसा प्रेम होगा न प्रभु का दर्शन होगा ऐसे प्रेम के बिना वो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। जब उनका मुख सूख गया और जबकि अत्यंत शोक करने लगे तो नारद जी को फिर दया आ गई विषय को वहीं पर चुपचाप बंद करना चाहते कि फिर उनमें दया उमड़ी शिष्य वात्सल्य और सोचा जी इसको कुछ उपाय बतलाना चाहिए जैसे वहां जाए उन्होंने कहा यद्यपि एतन महागोप्यम, यद्यपि महागोपनीय है, युज्यते नात्र जल्पितम, बैकुंठ जगत में इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, महिमा बैकुंठ में ये बात नहीं कहनी चाहिए, जहां पर मथुरा के सब पंडे और ब्राह्मण लोग एकत्रित हों वहां पर ये कहा जाए जो मथुरापुरी से कोटि गुण श्रेष्ठ वृंदावन है तो क्या करेंगे, लठिया चला देंगे, लठिया चला देंगे। वहां कहो कि वृंदावन का नाम मतलब कहो जो मथुरापुरी धन्य है, त्रिलोक में धन्य
लोक से
नारी है, मथुरा का महात्मा वर्ण, वहां पर वृंदावन की महिमा मत करो। और वृंदावन में जाकर के यदि ये कहो कि वृंदावन नंदगांव बरसाना इत्यादि की जितनी महिमा है गोवर्धन की महिमा के सामने तनिक कुछ नहीं है तो हो गया, वृंदावन वाले जितने हैं वो बिगड़ करके लाल हो जाएंगे। इसलिए समझ बुझ करके जानते हुए भी वैसे ही बोलना चाहिए, गड़बड़ जानने पर भी उसका स्वरूप ऐसा करना चाहिए। हम तो जानते ही हैं, देखो यहां से थोड़ी दूर पर बैकुंठ से थोड़ी दूर पर अयोध्या है, इतो अधूरे अयोध्या, अधूरे मैंने विनशतपुरी श्री रघुपते, रघुपति की जो पुरी है अयोध्या नगरी है, तो दूरे सुमन मधुपुरी सुमन मधुपरी पुरी एव सदृशी पुरी द्वारावती, और वहां से बहुत दूर द्वारकापुरी, बैकुंठ में निकट तो है क्या, और वहां से बहुत दूर मधुपुरी जैसी ही पुरी द्वारकापुरी अवस्थित, निकट है अयोध्या, और वहां से अयोध्या से भी बहुत दूर है द्वारावती, और द्वारावती कैसी है, मधुपुरी के ही समान, मधुपुरी के समान है। ये सीप देखने में चांदी जैसी है, समानता किस विषय में है, शैक्षिक के ही समानता है, तो मधुपुरी यू माने क्या,
मधुपुरी पर मधुपुरी के जैसा,
कैसी
सफिया है,
कुछ कुछ सादृश्य है किंतु जो प्रेम का परिपाक है उसमें कुछ
मधुपुरी,
कुछ मधुपुरी का वो मधुपुरी है, और ये द्वारावती है, मधुपुरी में बतलाया किस लिए, ध्यान से, यद्यपि समस्त इंद्रियों का राजा मन है और मन के अधीन जीवा एक इंद्रिय मात्र है, तो मन से किया जाने वाला कार्य भी सबसे उत्तम होना चाहिए था, और उसके अंग के रूप में जीवा है तो ये कैसे उत्तम हो जाएगा, तो शास्त्र की बहुत सी युक्तियों के आधार पर उन्होंने निर्णय दिया कि जितना भी ध्यान रहे वो कीर्तन की एक ही ध्वनि में कार्य में कहां मिल जाता है। शंकराचार्य जी संन्यास लिए, कितने वर्ष की उम्र में लिए, ऐसे ही 8-10 वर्ष की उम्र में उन्होंने ले लिया संन्यास, जब और कुछ प्रौढ़ हो गए पढ़ो मिलिया गौर आदि इत्यादि के निकट, कुमारी भक्ति इत्यादि को बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया, तो लेकर के अपने चेलों के साथ में शिष्यों के साथ में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में लगी प्यास, पर एक कुएं पर गए पानी पीने के लिए, पीने के लिए गए तो एक स्त्री पानी भर रही थी, गर्म से पानी पिला देंगे, तो वो किशोरी नवजोती थी, तो उसने पानी भरकर जिस बाल्टी से हो या जिस घड़े से पानी भर रही थी तो उसी से पिलाने लगी, तो शंकर उसके पास में ऐसे देखने लगे, किसी के इधर क्या देखता है, पानी क्यों तो इधर क्या से देख रहा है, वो देखने लगी, लड़की देखने लगी शंकर के तरफ। शंकर ने कहा जब तू पानी पिला रही है तो पानी क्यों नहीं पिलाती, हमारे पास तू क्यों देखती है। तो उसने उत्तर दिया क्या तुम तेरे जैसा हमारा एक नौकर था, तो वो परसों से ही ऊपर चला गया, मैं देख रही थी कि वही नौकर तो नहीं है, तेरे जैसा ही था। बात बढ़ गई कुछ, तो शंकर ने कुछ देखा कि ये तो साधारण महिला तो है नहीं है, पढ़ी लिखी है, विदेशी है, तो शंकर तो है नहीं थे ध्यान लगाने। कालिदास ने इसका वर्णन किया है, उनके अंशन का पाठ है समान सवन में, तो उस लड़की ने बताया ध्यान ध्यान वो कर रहे हो, हम लोगों के एक पायल पर तुम्हारा ध्यान में जिन्हें तनाव उड़ करके खत्म हो जाएगा।
विश्वाम पायल से
कितने लोगों विश्वामित्र सौभरी ऋषि और कितने लोग दूरवर्षी के एक पायल के रूझन पर सब कुछ खत्म हो गया, वो ध्यान कहां गया। इसलिए जब भी तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम का कीर्तन करो, और वो कीर्तन करो भजगोविंदम गोविंदम भज मूढ़, उसने सिखलाया, तो उसको सीख करके तब उन्होंने लिखा भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भजन अरे ध्यान मूढ़ते, तो ये क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा, ध्यान लगाया, ध्यान के बहाने लगे नहीं किस चीज का ध्यान कर रहा है, कि गंदी गंदी चीजों का, वो लेने में कहा था अरे मुंह मते ध्यान काम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बस ध्यान करने वाला व्यक्ति जहां तक दो आदमी खुद जोर से शोर कर रहे हो और मृदंग का धिक्तान धिक्तान भी चलाना, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, जो धिक्तान जो ध्यान कर रहे हैं और कलयुग केवल नाम धारण ही कर रहे हैं उनके लिए धिक धिक दे रहे हैं, या धिक धिक किया और ध्यान कार्य में कहां चला जाए, इसलिए कलयुग केवल नाम धारण नाम का ठीक भी नहीं है, ध्यान के चक्कर में मत पड़ना, भगवान नाम कीर्तन करना, ध्यान तो अपने आप आ जाए, पहले नाम इसके बाद में आएगा साथ साथ में रूप, और इसके साथ में आएगा नाम रूप गुरु, और गुरु के बाद में उनकी लीलाएं आएंगी और तुम्हें अपने आप बस ध्यान में ऐसा लगा देंगे जो समाधि लगी जाएगी। कैसी समाधि लगेगी, समाधि दो प्रकार, एक संप्रज्ञात एक असंप्रज्ञात,
संकल्पन
एक में होता है सहज समाधि, सबसे बड़ी समाधि जानते हैं कौन है, सहज समाधि, आंखें खुली हो बात करने और समाधि लगी हुई, एक होता है ऐसे जोड़ करके समाधि लगा रहे हैं और मन बम बार बार इधर उधर जाता है उसको पकड़ कर उसे लाते हैं, ये एक समाधि है, और सह समाधि है बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं किंतु मन धरी में लगा हुआ है एकदम, जैसे श्रीमती राधिका जी भ्रमों को दुख मान करके उससे बातचीत कर रही है, किंतु है क्या वो है, होश में है, होश में कोई भी गोपी होश में नहीं है, और लोग कहेंगे तो हंस रही है, बोल रही है, खा रही है, बेच कर रही है, प्रचार कर रही है, क्योंकि वो एकदम सहज समाधि में है, जिसको नारद जी जैसे व्यक्तियों को किए थे सहज समाधि प्राप्त करती है, और गोपियों को चुप्त के जाए कहीं सहज समाधि लगी रहती है, सहज समाधि को छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो सहज समाधि छूटती नहीं, ऐसी समाधि है। वैष्णवों की समाधि का उद्देश्य यही समाधि है, सहज समाधि। इसलिए जैन ज्ञान के तरफ में खबरदार मत जाना, सहज समाधि की तरफ में, और नहीं लगे समाधि जब तक तब तक हरे कृष्ण करो, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, यही सब महापुरुष ने जो जो बतलाया है कीर्तन, हरि हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय किशवाय, तो जो कुंज कुटीर
राधा,
ये अभी मत करना, अभी अभी ये सब कीर्तन मत करना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ये कौन कहेगा, अभी जिसका हो गया, अभी हुआ नहीं, बेटा हुआ नहीं, और सोहबा की गीत गाने लग गए पहले ही, इसलिए ये कीर्तन समय के अनुसार में विशेष विशेष भक्तों के द्वारा कभी कभी हो जो उद्दीपना के लिए, और अभी कहो तो भक्ति विनोद ठाकुर की शरणागति, नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थनाएं, ऐसे ऐसे कीर्तन कर दिया जाए जिसे कि कल है, और सवेरे का सूर सवेरा का सूर हो, शाम का सूर शाम का, नहीं तो संगड़ी लंगड़ी हो जाती है। एक बार नारद जी को ऐसे ही सब पुष्प व्यापी हो गई, गान कर रहे थे ऊंचा, बस ऐसे हो गए, तो इसलिए व्यक्ति सबके जो जानते हैं उनके अनुगत में एकदम भी मूलक सब समय करने की कोशिश की, सिद्धों का नहीं, सिद्धों का ये सब कीर्तन जो है राधा कृष्ण प्राण मोह, ये कौन कहे जाता हूं, जिसको हो गया वो, और ये राधा ये सब छाड़ तो प्राण हरण, ये सब छोड़ो तो प्राण हरण,
कहीं नहीं जाओ, ये सब छोड़ो तो प्राण हरण,
आप तो अभी तो कहीं नहीं जाएंगे, और जहां छोड़ेंगे तो प्राण छूट जाएगा कि नहीं, छूट जाएगा कि नहीं, अभी नहीं छूटेगा, तो इसलिए समझ बुझ करके कितना हम लोग करें, ऐसा जिसके हम अधिकारी, कभी कभी वैष्णव के कहने से ये सब उत्पन्न, और बाकी सब नरोत्तम ठाकुर के भक्ति परिणाम मिले, भक्ति विनोद ठाकुर जी के और सब चिंतन गोविंद दास और गोविंद दास जी का अजमरी मन सिंह नंदनंदन अभय चरण और अभिंद और सब चिंतन बुरा कहूं ना भजिया मैं प्रेम रतन धन फैलाया, ऐसे सब कीर्तन, और उसमें जो प्राचीन वैष्णव है वो लोग गाएंगे, क्योंकि वो तो गाते हुए आए हैं, और यहाँ पर कुछ अंदर में कुछ लालसा जगी है, और नवीन भक्तों को नवीन कीर्तन प्रार्थना मूलक इत्यादि करता है, और सुस्पष्ट से हो उधर उधर न हो, तो हम लोगों का चल रहा था बैठक में, दोनों की बातें अभी ध्यान से समझ में, वो बातें पीछे हुई थी इसलिए प्रसंग वस्ता मैंने कह दिया, तो चल रहा था बात कि बैठक में इनको अच्छा ही नहीं लग रहा, और वो समय बैकुंठ में तो सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको देख करके कुछ दया आ गई, तो उन्होंने बतलाया तुम्हारे अंदर में स्वरूपता कुछ ऐसा छिपा हुआ प्रेम है जो भीतर में तुम्हारे है अभी प्रकटित नहीं हुआ, इसलिए तुमको वो चीज प्रेम यहां नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसलिए तुमको अच्छा नहीं, वो प्रेम प्रभु विशेष लोगों के अतिरिक्त साधारण लोगों को नहीं दिया करते हैं, जिसका अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उन्हीं को देते हैं। विशेष करके लोग चार प्रकार की, एक प्रकार की मुक्ति देते हैं शारीरिक और पिंड छुड़ा लेते हैं। यदि नहीं मानता है तो चार प्रकार की मुक्ति देकर के बैठ मुक्ति नहीं देता, सारूप सारूप सामित्व और सस्व। इससे भी संतुष्ट नहीं होता तो ये मुक्तियां जो चार प्रकार की हैं बैकुंठ वाली, ये
उत्तर
सुख ऐश्वर्य उत्तरा है बैकुंठ वाली। और बैकुंठ के ही अपर भाग में जो राम इत्यादि का लोक है वहां पर प्रेम सेवा उत्तरा है, प्रेम सुख उत्तरा प्रेम। हनुमान जी वहां पर प्रेम से, हनुमान जी प्रेम का भक्त हैं इसलिए वहां पर उस सेवा में भी प्रेम देते हैं, किंतु दुर्व्रत है ये। और उससे भी क्योंकि इसमें कुछ ऐश्वर्य है, माधुर्य प्रेम उत्तरा जो भक्ति है ये बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, ये इसके लेने वाले जगत में बहुत कम है, उनको कम है। इसलिए कहते हैं प्रेम भक्ति स्पृहाजुक्त, इसमें स्पृहा अवसर हो वो लोक व्यवहार के अतीत किसी महान आदर्श पुरुष को ही प्रभु वो दिया करते हैं, दूसरे को नहीं दिया करते। हम लोग भी उस परिपाक जो भक्ति का प्रेम का परिवार हो जाता है उसके लक्षण को व्यक्त नहीं करते, शास्त्रों में भी नहीं व्यक्त, ये उस दिन बताया है। और व्यक्त करने से उसका उल्टा फल हो जाता है, उसमें मान क्यों होता है, गोपी में परस्पर ईर्षा द्वेष क्यों हो जाता है, इसलिए अनाधिकारी लोग इसको न समझते और उसे नहीं कहा गया, व्यक्त नहीं किया गया उस प्रेम के संबंध में। यदि कोई करता है तो अनाधिकारी लोगों का अनर्थ हो जाता है, इसलिए उसे नहीं कहा गया है। तो जो इसके रसिक लोग हैं प्रेम के वही लोग इसको जानते हैं, क्योंकि वो कहते नहीं, ये स्वयं संवेद्य दशा है, अपने आप भजन के प्रभाव से समझा जा सकता है। तुम भी इसके परिचय हो उस प्रेम के, तुम भी इसको समझोगे और तुम भी वहां जाओगे अपने इष्टदेव के पास, तुम्हारे इष्टदेव मदन गोपाल जी हैं, तुम वहां जाएगा और अपने आप तुम समझोगे, जिस चीज को हम भी नहीं जानते हैं उस चीज को तुम समझ जाएगा। इस पर सुनकर के लोग कुमार जी के हृदय उत्कंठा देगी कि अब हम हमारे इष्ट गोपाल देव जहां रहते हैं, कहां रहते हैं, वो तो रहते हैं ब्रज में, तो ब्रज में जाने के लिए बड़े उत्सुक हो गए, किंतु इनकी ये दर्शन की लालसा ताद्विक भाव विशेष विशेष आशा बात्या अपि अजनी तत्ना, उनको वहां जाने की उत्कंठा तत्ना जागृत हो गई। और नारद जी ने उसे देखा, देखकर के उनको सांत्वना देकर के बोले, जाने की तो इच्छा है, जाएगा कैसे, जाने का पथ तुमको मालूम है मार्ग, कहीं जाने की इच्छा करने से नहीं होगा, उसका मार्ग जानना चाहिए, मार्ग जानता है वहां जाने का। और जाने के कुछ नियम होते हैं, हम बंबई जाएंगे एरोप्लेन से, ठीक टिकट नहीं लेंगे, समय पर टिकट नहीं लिया, आप जानते नहीं ये कैसे जाया जाता है, कोई अभिज्ञता नहीं है, तो हो जाएगा ऐसे ही यहीं पर बैठ करके तुम्हारे लिए एरोप्लेन आ जाएगी और तुम यहां से चल करके चला जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया मार्ग और सब चीजों को अपने पुरुष से जानने के उन्होंने पूछा तो नहीं, तुमने ये पूछने योग्य भी अभी नहीं है, इसलिए अपने आप उसको बताएंगे कैसे जाया जाता है, मार्ग कैसा है। नारायण दास जब एकम महागोप्यम विद्यते ना प्रकट जल, यद्यपि यह बात बहुत ही गोपनीय है और बैकुंठ में इसका इसको प्रकाश करना भी उचित नहीं मैं समझता, तथापि तुम्हारी ये दशा देख करके, कातरता देख करके, उत्कंठा देख करके मैं तुम्हें ये बोलने के लिए बात करूंगा। तो सावधानी के साथ सुन, जाने का एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्या मार्ग है? यहां से थोड़ी दूर अयोध्या है और अयोध्या वहां पर भगवान रामचंद्र जी वहां पर विराजमान है, बड़े दयालु हैं और वहां से बहुत दूर द्वारकापुरी है, मथुरापुरी के समान ही है, दोनों में अंतर नहीं है। क्या अंतर नहीं है कि क्योंकि जदुपुरी में मथुरापुरी में जो जो जादव थे उग्रसेन अक्रूर उद्धव सत्यकी और जितने भी जादव थे और ऋषि महर्षि पुरोहित ब्राह्मण जो गर्गाचार्य इत्यादि वो लोग और मथुरा के जितने बनिए लोग थे वो सभी लोग और दूसरी जो जातियों के लोग मथुरापुरी में थे एक ही रात में सबको उठा करके लेकर के चले गए, उनको पता भी नहीं चला, सोए हुए स्थिति में सबको ले लिया, मथुरापुरी यहीं पर छुप ले रह गए और वहां पर मथुरापुरी से भी लाखों गुण सौंदर्य युक्त तरह तरह की सुंदर सुंदर उपवन वन और क्या क्या चीजें सब जो आधुनिक नगर में होना चाहिए वो सबसे युक्त बहुत सुंदर वहां पर बसे और देखा कि एक एक राजभवन में ये लोग सब सोए पड़े हैं। जब रात में उठे सवेरे हम लोग कहां आए, देखा नौकरी में आ गए न जे कहां आ गए, फिर धीरे 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 उन्होंने देखा लंबी चौड़ी सड़कें हैं, पार्क बने गए हैं, पार्कों में अच्छी अच्छी चीजें हैं और सुंदर सुंदर राजभवन जिस तरह चित्र में हंस के तो हंस आ रहे हैं उनसे जैसे वो हमारी ही जाति के हैं, मयूर जो बने हुए हैं वो असली मोरों से भी ऐसे मालूम होते हैं कि सुंदर है, ऐसी चित्रकारी विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो वहां पर सभी लोग पहुंच गए तो मधुपुरी भी तो वहां है ना, थोड़ी सी बात यह हुई कि वहां पर कृष्ण की और जादुओं की शादियां रुक्मिणी जी सब प्रधाना जी और सब रानियां वहां आए, इसलिए कोई अंतर नहीं, कृष्ण के प्रति जिनका जो भाव था वही था, तो रानियां जो नहीं आई उनकी कृष्ण में पति उसी भावना वहां पर आई और कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र ये सब लड़कियां और सब उनकी शादी विवाह इत्यादि हुई, इसलिए जदुपुरी ही मथुरापुरी की तरह की है, यहां जमुना है और यहां महासमुद्र है, सभी एक तरह है, यहां का पानी भी खारा और द्वारका का पानी भी खारा, यहां का भी बहुत नीचे पानी वहां पर भी,
यमुना जी का पानी तो खड़ी नहीं है,
यमुना जी का तो नहीं है किंतु कुछ तो विशेषता नहीं दी हुई, तब तो इतनी मुलाकी थी वहां का पानी भी खारा है, बहुत कुएं खोदने पर बहुत से बहुत कम ऐसे होते बहुत गहराई पर थोड़ा सा मीठा पानी और जैसे यहां पर पेड़ में वो क्या होता है खेती के दोनों से नापर्दी है। कुछ कुछ बातों में समानता भी है, कुछ कुछ बातों में असमानता भी है। वहां भी ऐश्वर्य है, यहां भी ऐश्वर्य है, किंतु यहां पर माधुर्य कुछ है। वहां पर माधुर्य है किंतु अधिक मथुरा की अपेक्षा कम है। तो वो कह रहे हैं मधुपुरी के पास ही में है, मथुरा से द्वारकापुरी दिखती है और एक समान है। कहीं कहीं पर लिखा गया सूरसेन का जो राज्य है उसके अंतर्गत में वो द्वारकापुरी, अथवा कुशस्थली के अंतर्गत मथुरा से लेकर के द्वारका तक और सिंध नदी के किनारे तक सब कुशस्थली के अंतर्गत है, इसलिए भी इसको कहा। किंतु विशेष करके ये कहा जो अयोध्यापुरी यहां से थोड़ी दूर है और द्वारकापुर यहां से कहां से बैकुंठ से बदला है बहुत, क्यों कहा इसका स्थान के कार्य यहां पर नहीं है, दूरी भावों की दूरी है। वहां तो मन से करते पहुंच जाते एक मिनट समय नहीं लगता, इसलिए स्थान की दूरी नहीं भावों की दूरी। दो आदमी एक साथ में बैठे हैं और विरोधी भाव के हैं तो बहुत दूर है, और बहुत दूर रहने पर भी दोनों के भाव एक समान सम हो तो बहुत मिल सकता है। इसलिए अब देखेंगे कि बैकुंठ से मथुरापुरी, बैकुंठ से अयोध्यापुरी निकट क्यों है, इसलिए है कि दोनों में दास रस प्रधान है, किंतु दोनों के दास में कुछ थोड़ा सा वैशिष्ट्य है। बैकुंठ में जो दास है वो कुछ समस्त संगम सनत कुमार के शांत अवस्थ के साथ में मिला जा रहता है, उसके निकटता है, और अयोध्या वाला जो है वो सखर का कुछ थोड़ा सा भाव मिल करके रहता है, थोड़ा सा या शुद्ध सखर रहता है, अधिकांश में शुद्ध दास्य रहता है। तो यहां पर भी दास्य में नारद इत्यादि जितने ऋषि महर्षियों का ब्रह्मा इत्यादि अधिकृत दास है, ये बैकुंठ से संबंधित है। यहां के जय विजय इत्यादि ये सब दास हैं, विश्वक्सेन दास हैं, बैकुंठ के नारद जी भी दास हैं, लक्ष्मी जी भी दासी हैं। यहां पर सब समय हम जोड़े हुए रहेंगे और उनके आज्ञा की प्रतीक्षा करेंगे, और नारायण सब समय इसी रूप में इसी मुद्रा का प्रतीक्षा, कोई दूसरी मुद्रा नहीं रहेगी। इसका मुद्रा का मतलब क्या है, अभय तुमको अभय देता है। अभय किस लिए, अब जन मरण का कोई दुख नहीं है, यहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब अभय है। और रामचंद्र जी का क्या है, वहां पर दास वर्ष में नारायण किसी के कंधे पर नहीं चढ़ेंगे, वो चढ़ेंगे तो किस पर, जरूर पर परिकर उनके दस एक परिकर, और कभी भी उनका जन्म लीला नहीं होगा नारायण की। रामचंद्र जी की जन्म की लीला भी है, और वहां का दासरस ऐसा है जो रामचंद्र जी स्पष्ट रूप में उनसे बहुत प्रीति रखते हैं, निकटतम का व्यवहार। रामचंद्र जी जिस प्रकार से बंदरी सेना में खाली पैर और दुखों को कष्टों को सहते हुए घूमा और लोगों का चित्त आकर्षण किया, ऐसा नारायण की लीला में नहीं है। तत्वतः राम में और नारायण में कोई अंतर नहीं, एक ही है, किंतु लीला का कुछ वैशिष्ट है, किंतु दास भाव उनमें भी है, दास भाव उनमें भी है, उनमें कुछ बात्सल्य और सत्य का आधा भाव रामचंद्र ने, इनमें दास्य के अतिरिक्त सत्य और वात्सल्य का कोई भाव नहीं, इतनी थोड़ी सी विशेषता जरूर है। किंतु अयोध्या का वात्सल्य भी और सत्य भी वो कृष्ण ही के लिया है, किंतु उसमें दास्य रस की प्रधानता है। जैसे सुग्रीव से मिताली होने पर भी, विभीषण से उनकी मिताली मित्रता होने पर भी ये लोग उनके दास, सीता जी भी उनकी दासी हैं, वो सीता जी का कहना नहीं चलेगा, चलेगा किसका, रामचंद्र जी का कहना चलेगा। परामर्श दे सकती है रामचंद्र जी मानने के लिए कोई बात है नहीं। यहां पर सीता जी रो रही हैं, कलप रही हैं और जानते ही इनका दुख होगा, उनके हृदय में प्रीति भी है। जिस समय लक्ष्मी जी सीता को छोड़कर के वन में आए वाल्मीकि के आश्रम में, तो कात्यायन और रामचंद्र जी से कहने लगे रोते रोते, पहले तो मुख छिपा करके वो आए नहीं राम के पास में, और जब आए भी तो रोने से घिघी बंद गई तो कुछ कह न सके उनके साथ। उस दिन से रामचंद्र जी खाना पीना छोड़ दिया, क्या खाते कल्पना करके देखते जो सीता जी ये खा रहे थे, और पलंग पर सोते थे कि नहीं, पलंग पर सोना छोड़ दिया। तो वो सीता जी जैसे वहां पर पेटों से बनी हुई, अपने हाथ से बनी हुई, या तार के पत्तों से जो चटाई इत्यादि बनाई जाती है, या घास फूस से बनी हुई जो सैया होती है ऐसे बना दिए, और उसी तरह अपने घर में लहू में तपस्या के साथ हो, बल्कि वन में सीता जी के साथ में आनंद के साथ में रहते थे। किंतु आज सीता जी के बिना इस महल में बिच्छू, करोड़ों बिच्छू उनको डस रहे हैं, काट रहे हैं, इस प्रकार से वहां पर बिता रहे हैं, फिर भी उनको वनवास दे रहे हैं। और सीता जी ने भी पति की आज्ञा मानकर उसको सह दिया। बैकुंठ में ये लीलाएं नहीं है, इसलिए क्योंकि थोड़ी दूर इसलिए कहा कि उसमें भी दास्य है, इसमें भी दास्य है, बस इसलिए।